एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो इतिहास के पन्नों को पलटती है, पर एक बहुत ही मतलब अलग अंदाज में।
हाँ।
हम बात कर रहे हैं जेडी स्मिथ के पहले ऐतिहासिक उपन्यास द फ्रॉड की। ये 2023 में आया।
बिल्कुल, जेडी स्मिथ समकालीन अंग्रेजी साहित्य की तो वो एक बहुत जानी मानी आवाज है।
हाँ बिल्कुल, अपनी पैनी नजर और किरदारों की गहरी समझ के लिए मशहूर है।
और उनकी जो मिश्रित विरासत है, जमैकन माँ, अंग्रेज पिता, उसका असर अक्सर दिखता उनके लेखन में।
हाँ, पहचान, वर्ग, नस्ल, ये सारे मुद्दे अक्सर सामने आते हैं।
द फ्रॉड हमें ले जाता है विक्टोरियन इंग्लैंड, करीब 1870 का दशक, और साथ ही जमैका के इतिहास की परतें भी खोलता है।
और ये कहानी एक असली मतलब सनसनीखेज अदालती मामले पर आधारित है, टिचबॉर्न ट्रायल।
हाँ, उस केस ने तो उस जमाने के इंग्लैंड को जैसे हिलाकर रख दिया था।
तो आज हम इसी उपन्यास की कहानी, इसके किरदारों के उतार चढ़ाव और इसके दिल में छुपे सवालों को समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, जैसे कि सच क्या है, धोखा क्या है,
और
किसकी कहानी कहने लायक समझी जाती है,
यही सब।
बिल्कुल, तो कहानी हमें सीधा ले चलती है 1870 के दशक के लंदन, और वहां मतलब हर किसी की जुबान पर बस एक ही नाम है, टिचबॉर्न केस।
एकदम जुनून सा छाया हुआ है।
हाँ, माहौल ऐसा है जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा हो शहर में। ऑस्ट्रेलिया से एक आदमी आया है, मोटा ताजा सा, दिखने में थोड़ा अजीब,
और वो दावा कर रहा है कि वही है सर रॉजर टिचबॉर्न।
वही, सालों पहले समंदर में गायब हुआ अमीर वारिस। अब सोचिए उस वक्त ये कितनी जबरदस्त खबर रही होगी। पूरा समाज दो हिस्सों में बढ़ गया है। कुछ लोग उसे सिर आंखों पर बिठा रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ यही है असली वारिस।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ ज्यादातर पढ़े लिखे ऊंचे तबके के लोग वो उसे झूठा मान रहे हैं, एक धोखेबाज।
और इसी हंगामे के बीच हमारी मुलाकात होती है उपन्यास की मुख्य किरदार मिसेज एलिजा टॉशेट से।
हाँ, एलिजा टॉशेट स्कॉटिश विधवा हैं, बहुत समझदार,
दुनिया को शक की निगाह से देखने वाली, थोड़ी अलग थलग सी।
और वो अपने मरहूम शौहर के चचेरे भाई विलियम आइंसवर्थ उनके घर पर रहती हैं, एक तरह से हाउसकीपर का काम करती हैं।
अच्छा, और ये विलियम आइंसवर्थ ये भी कोई मामूली आदमी नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी उनका बड़ा नाम था, चार्ल्स डिकिंस जैसे लेखकों के टक्कर के माने जाते थे, पर अब उनका वक्त ढल चुका है, शोहरत फीकी पड़ गई है।
और दिलचस्प बात यह है कि आइंसवर्थ इस दावेदार के बड़े समर्थकों में से हैं।
हाँ, यही तो, ये भी एक सवाल है कि क्यों।
और एलिजा की स्थिति उस घर में वो भी बड़ी अजीब है।
बिल्कुल, न वो पूरी तरह परिवार का हिस्सा है, न ही कोई नौकर।
किनारे पर खड़ी सब कुछ देखती रहती हैं, अपनी किताबों में खोई रहती हैं।
और ये पूरा टिचबॉर्न मामला उसे वो एक बड़े मजाक की तरह देखती हैं।
या शायद एक सामूहिक पागलपन।
हाँ बिल्कुल, उन्हें यकीन नहीं होता कि लोग इस कहानी पर कैसे विश्वास कर सकते हैं।
और दूसरी तरफ है विलियम आइंसवर्थ, वो अपने पुराने दिनों की कामयाबी की यादों में जी रहे हैं।
हाँ, और उनका लिखना भी, जो ज्यादातर हिस्टोरिकल रोमांस होता है, तथ्यों से काफी दूर।
उसे भी एक तरह का फ्रॉड या धोखा कह सकते हैं।
हाँ, कह सकते हैं। नहीं, ये एक दिलचस्प पहलू है, शायद इसीलिए आइंसवर्थ को उस दावेदार से सहानुभूति है।
जैसे एक कलाकार दूसरे कलाकार को पहचानता है, या शायद एक धोखेबाज दूसरे को।
हो सकता है। और एलिसा और विलियम का रिश्ता भी बड़ा उलझा हुआ है। जरूरतें उन्हें बांधे रखती हैं, पर एक खामोश सी दूरी भी है।
बिल्कुल, एलिजा की तेज बुद्धि के बावजूद विक्टोरियन समाज में एक औरत होने के नाते, खासकर एक विधवा, उसके दायरे बहुत सीमित हैं।
तो होता यह है कि एलिजा शायद बस वक्त काटने के लिए या लोगों का मजाक उड़ाने के इरादे से टिचबॉर्न ट्रायल की सुनवाई देखने जाने लगती हैं।
और कोर्टरूम का नजारा कैसा है?
अरे, जेडी स्मिथ ने जो नक्शा खींचा है वो कमाल का है। वो जगह जैसे एक थिएटर बन जाती है। वकील अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं,
गवाह अपनी कहानियां सुना रहे हैं।
हाँ, कुछ सच, कुछ झूठ, कुछ बड़ा चढ़ाकर, और बाहर भीड़ है, नारे लगा रही है, अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर रही है।
पूरा तमाशा।
बिल्कुल, कहानी में असली मोड़ तब आता है जब एंड्रू बोगल गवाही देने आते हैं।
एंड्रू बोगल, हाँ, ये किरदार बहुत अहम लगता है।
बहुत। बोगल एक अश्वेत व्यक्ति हैं, जो कभी जमैका में टिचबॉर्न परिवार के ही एक चीनी के बागान पर, होप प्लांटेशन पर गुलाम थे।
अच्छा।
अब वो लंदन में हैं और दावेदार के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ यही आदमी असली सर रॉजर है जिसे वो जवानी में जानते थे।
और उनका अंदाज वो बाकी गवाहों से अलग है,
एकदम अलग। कहां वो शोर शराबा ड्रामा, और कहां बोगल का शांत ठहरा हुआ गरिमापूर्ण रवैया।
और एलाइजा पर उनकी गवाही का गहरा असर पड़ता है। क्यों?
शायद इसलिए कि उनकी बातों में कोई बनावट नहीं लगती। सालों बाद एलिजा को एहसास होता है कि बोगल की गवाही सुनते वक्त उसे एक अजीब सा सुकून मिला था,
जैसे किसी ठोस सच्चाई का सामना हुआ हो।
हाँ बिल्कुल, किसी अकाट्य सत्य का। उसकी कहानी पर यकीन करने या ना करने का सवाल ही नहीं था, वो बस थी, वो सच थी, अपने आप में पूरी।
ये एलिजा के लिए एक बड़ा झटका है, एक टर्निंग पॉइंट।
हाँ, वो अब तक जिस चीज को महज तमाशा समझ रही थी उसमें उसे सच्चाई की एक झलक दिख जाती है, पर वो झलक दावेदार में नहीं
बल्कि इस पूर्व गुलाम गवाह में दिखती है।
सही।
और जहां तक उस दावेदार का सवाल है, जिसका असली नाम शायद आर्थर ऑटन था।
हाँ, लंदन का एक कसाई, पर उपन्यास इस पहेली को सुलझाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता कि वो सच बोल रहा है या झूठ।
वो तो जैसे एक आईना बन जाता है।
बिल्कुल, एक आईना जिसमें पूरा विक्टोरियन समाज अपनी उम्मीदें, अपनी शिकायतें, अपने डर, अपने पूर्वाग्रह देख रहा है।
लोग उस पर अपनी कहानियां थोप रहे हैं।
हाँ, वो इस बात का प्रतीक बन जाता है कि कैसे कहानियां गढ़ी जाती हैं, कैसे लोग चमत्कारों पर या अमीरों के गिरने पर विश्वास करना चाहते हैं।
बिल्कुल, और यहीं से उपन्यास अपने गहरे सवालों की तरफ बढ़ता है।
हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, सच क्या है, प्रामाणिकता क्या है,
और क्या धोखा सिर्फ उस दावेदार तक सीमित है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। स्मिथ दिखाती हैं कि धोखा तो हर तरफ है, विलियम एंसवर्थ के उपन्यासों में जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं,
विक्टोरियन समाज के दिखावटीपन में।
हाँ, जहां लोग कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और हैं, और उस न्याय व्यवस्था में भी वो सच खोजने का दावा तो करती है, लेकिन असल में क्या ढूंढ रही होती है?
ये एक बड़ा सवाल है। क्या अदालत सच में सच ढूंढ रही थी, या बस एक ऐसी कहानी जिस पर ज्यादातर लोग सहमत हो सकें?
उपन्यास इशारा करता है कि शायद कानून का मकसद सच से ज्यादा आम सहमति बनाना होता है।
और सबसे बड़ा धोखा तो शायद ब्रिटिश साम्राज्य की उस शानदार कहानी में छुपा है।
हाँ, जो अपनी तरक्की और शान शौकत तो दिखाती है, पर उसके पीछे छिपे शोषण और क्रूरता पर पर्दा डाल देती है। टिचबोन केस तो बस एक छोटा सा उदाहरण है इस बड़े खेल का।
और जब ट्रायल खत्म होता है, दावेदार झूठा साबित होता है, उसे जेल हो जाती है, तब
एलिजा का ध्यान पूरी तरह से एंड्रयू बोगल पर चला जाता है। वो अब दावेदार की कहानी में दिलचस्पी नहीं रखती,
वो बोगल को ढूंढती है।
हाँ, और फैसला करती है कि वो उनकी कहानी लिखेगी, उनकी जीवनी। यहीं से उपन्यास का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है।
एंड्रयू बोगल अब सिर्फ एक गवाह नहीं रहते।
नहीं, वो कहानी के नैतिक केंद्र बन जाते हैं। उनमें एक अजीब सी शांति है, एक गरिमा, एक ताकत।
और उनकी कहानी हमें लंदन से दूर ले जाती है।
हाँ, सीधा जमैका के उन चीनी के बगानों में, होप प्लांटेशन। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है।
यहाँ कोई तमाशा नहीं है,
यहाँ सिर्फ हाल तोड़ मेहनत है, बेरहमी है, गुलामी की अमानवीयता है। हम बोगल के नजरिए से देखते हैं कि कैसे इंसानों को जानवरों की तरह रखा जाता था, कैसे चीनी उगाने के लिए उनकी जिंदगियां निचोड़ी जाती थी।
भयानक।
हम 1831 के बैप्टिस्ट युद्ध के बारे में जानते हैं, गुलामों का एक बड़ा विद्रोह था जिसे बेरहमी से कुचल दिया गया था। हम आजादी के लिए उनके संघर्ष को महसूस करते हैं।
ये है वो सच जिसे इंग्लैंड की भव्य कहानियों में छुपा दिया गया था।
बिल्कुल, एलिजा को भी यही समझ आने लगता है। विलियम एंसवर्थ राजाओं और रानियों के झूठे किस्से लिखते थे, पर इंग्लैंड का असली इतिहास, उसकी दौलत की नींव,
शायद जमैका के उन गन्ने के खेतों के हिसाब किताब में लिखी थी।
हाँ, एंड्रयू बोगल जैसे उन अनगिनत लोगों की जिंदगियों और मौतों में जिनके नाम कभी किसी उपन्यास में नहीं आए, ये एक बहुत ही झकझोर देने वाला एहसास है। और ये हमें उपन्यास के एक और अहम सवाल पर लाता है, किसकी कहानी कही जाती है, किसके पास हक है अपनी कहानी सुनाने का। हाँ, ये नैरेटिव पॉलिटिक्स या कहानी कहने की राजनीति का सवाल है।
उपन्यास पूछता है कि इतिहास हो, समाज हो, साहित्य, हम किसकी कहानियों को अहमियत देते हैं।
पूरा इंग्लैंड एक गोरे अमीर आदमी की पहचान असली है या नकली, इस पर पागल हुआ जा रहा है, जबकि एक काले आदमी की जिंदगी, उसके संघर्ष की कहीं ज्यादा गहरी और सच्ची कहानी,
उसे या तो अनदेखा कर दिया जाता है या उसे बस मुकदमे का एक पुर्जा समझा जाता है।
सही। एलिजा का बोगल की कहानी लिखने का फैसला इस नाइंसाफी को पहचानने और एक हाशिए पर पड़ी आवाज को सामने लाने की कोशिश है।
बिल्कुल, और इसी के साथ उपन्यास गुलामी और उपनिवेशवाद की उस विरासत को भी बेनकाब करता है
जिस पर वो पूरा विक्टोरियन समाज टिका था, वो शानो शौकत, वो आराम, वो बहसें, इन सब के पीछे बुगल जैसे लोगों का लूटा हुआ श्रम और छीनी हुई जिंदगी थी।
और फिर एलिजा के जरिए उपन्यास ये भी दिखाता है कि 19वीं सदी में एक बुद्धिमान औरत के लिए जिंदगी कितनी घुटन भरी हो सकती थी।
हाँ, बोगल की कहानी लिखकर वो सिर्फ बोगल को ही आवाज नहीं दे रही, बल्कि वो खुद अपने लिए भी एक मकसद, एक भूमिका तलाश रही है
जो समाज उसे देने को तैयार नहीं था। उपन्यास में एक जगह महसूस होता है, उस दुनिया में औरत होने का मतलब था हमेशा अपने होने का सबूत देना।
हाँ, उन जगहों पर अपनी मौजूदगी को जायज ठहराना जिन्हें मर्द अपना हक समझते थे।
अच्छा, अब अगर हम बात करें कि स्मिथ ने ये कहानी कही कैसे है, मतलब इसकी शैली और संरचना की।
हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है। ज्यादातर कहानी एलिजा के नजरिए से कही गई है, जिसे हम क्लोज थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव कहते हैं।
मतलब हम दुनिया को लगभग एलिजा की आंखों से देखते हैं।
हाँ, उसके विचारों और भावनाओं को करीब से महसूस करते हैं, जैसे हम उसके कंधे पर बैठकर ही सब कुछ देख और समझ रहे हों। ये हमें एलिजा के शक, उसकी बुद्धिमत्ता, उसके अकेलेपन से जोड़ता है।
लेकिन बाद में नजरिया बदलता है जब बोगल की कहानी आती है।
हाँ, तब ये नजरिया बदलता है और हमें सीधे बोगल के अनुभवों की गहराई और भयावहता का सामना करना पड़ता है। वो बदलाव बहुत शक्तिशाली है।
और उपन्यास की बनावट भी वो सीधी नहीं है।
नहीं, पारंपरिक नहीं है, ये नॉन लीनियर है, मतलब समय में आगे पीछे जाती है और फ्रैगमेंटेड यानी टुकड़ों में बटी हुई है।
छोटे छोटे अध्याय हैं।
हाँ, 150 से भी ज्यादा, जिनके अपने शीर्षक हैं। ये तरीका क्यों? शायद इसलिए कि इतिहास और यादें भी तो ऐसे ही टुकड़ों में हमारे सामने आती हैं ना।
हाँ, हम अतीत को एक पूरी फिल्म की तरह नहीं देखते।
बिल्कुल, अलग अलग झलकियों, अलग अलग पलों में याद करते हैं। ये टुकड़े मिलकर किरदारों और उस दुनिया की एक ज्यादा जटिल और सच्ची तस्वीर बनाते हैं।
और भाषा, जीडी स्मिथ की भाषा
बहुत पैनी है, उसमें व्यंग है, हास्य है, खासकर जब वो विक्टोरियन समाज के ढोंग पर चोट करती हैं। संवाद बहुत जीवंत लगते हैं।
शुरुआत में ये व्यंग हमें कहानी से थोड़ा अलग रखता है शायद।
हाँ, एक तरह की बौद्धिक दूरी रहती है, लेकिन यही अंदाज बाद में बोगल की कहानी की गंभीरता और त्रासदी को और ज्यादा उभारता है। वो कंट्रास्ट बहुत असरदार है।
इसमें मेटाफिक्शन का भी पुट है, मतलब कहानी कहानी कहने पर ही टिप्पणी करती है।
हाँ बिल्कुल, एक तरफ विलियम आइंसवर्थ हैं, जो इतिहास को रोमांचक बनाने के लिए मनगढ़ंत किस्से लिखते हैं,
और दूसरी तरफ एलिजा,
जो बोगल की सच्ची गवाही को दर्ज करके इतिहास लिखने का एक ज्यादा ईमानदार, ज्यादा नैतिक तरीका अपनाने की कोशिश कर रही है।
तो उपन्यास ये सवाल भी उठाता है कि ऐतिहासिक कथा का मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ मनोरंजन या सच की तलाश भी?
हाँ, या गवाही देना भी?
और भावनात्मक रूप से उपन्यास पाठक को एक सफर पर ले जाता है।
बिल्कुल, हम शुरू करते हैं एक कोर्टरूम ड्रामे के दर्शक की तरह, शायद थोड़े अलग, थोड़े व्यंग्यात्मक मूड में, लेकिन धीरे धीरे, खासकर बोगल की कहानी के साथ,
हम इतिहास के एक भयानक सच के गवाह बन जाते हैं।
हाँ, गुलामी का चित्रण इतना सजीव और दर्दनाक है कि वो हमें झकझोर कर रख देता है। हम तमाशाबीन से गवाह बन जाते हैं।
और इसका गहरा असर क्या होता है, यह हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है?
यही कि आज हम जो कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उनमें किसकी आवाजें शामिल हैं, किन सच्चाइयों को हम नजरअंदाज कर देते हैं।
ये किताब हमें इतिहास को फिर से देखने, ये समझने के लिए उकसाती है कि अक्सर किसी देश की महानता उन अपराधों और अनकही कहानियों पर टिकी होती है जिन्हें भुला दिया गया है।
तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है? शायद यही कि जो कहानियां शोर मचाती हैं, जो सुर्खियां बटोरती हैं,
उनके नीचे अक्सर कुछ खामोश सच दबे होते हैं।
हाँ, और उन खामोश सच्चों को सुनना, उन्हें गवाही देना, शायद हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है।
बिल्कुल, और ये आज भी उतनी ही मौजू है, क्योंकि ये याद दिलाती है कि कहानी कहने की ताकत सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है।
हाँ, इसका इस्तेमाल न्याय के लिए, उन आवाजों को उठाने के लिए होना चाहिए जिन्हें दबा दिया गया है,
और इतिहास की उलझी हुई मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने के लिए भी। यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।